मेरे नौजवान साथियों नमस्कार। का टॉपिक है महत्वपूर्ण पारिभाषिक शब्दों के अर्थ। जो मैं जिसको मैंने पारिभाषिक शब्द कहा है, डिफाइंड वर्ड्स कहा है, ये बेसिकली है क्या, आप थोड़ा सा इसको समझ लीजिए और इसकी इंपॉर्टेंस क्या है। फ्रेंड्स, कुछ शब्द ऐसे होते हैं जो कह लीजिए उसमें प्रीफिक्स लगा दिया जाएगा, सफिक्स लगा दिया जाएगा, अगर वो नहीं भी लगाया जाएगा तो उसको एडजेक्टिव बना दिया जाएगा। कुछ उन शब्दों के साथ कुछ ऐसे खेल किए जाते हैं और फिर जब उसका लगातार यूज हम करने लगते हैं तो वे शब्द होते तो एक ही हैं, एक ही शब्द होगा, लेकिन वो अपने आसपास के एक बड़े परिवेश को रिप्रेजेंट करते हैं। जो उनके जो अर्थ होते हैं, उनका जो एक्सप्रेशन होता है, वो आप कह लीजिए कि एक व्यापक अर्थों में होता है। जब तक हम उसकी उन पृष्ठभूमि को न समझ पाएं या कह लीजिए उस पूरे के पूरे परिवेश को न समझें, तब तक सही मायने में हम उस शब्द का अर्थ नहीं निकाल सकते। और अगर हम निकालेंगे भी तो जो वास्तव में जो उसकी ताकत है, उस शब्द की जो शक्ति है, जो उसकी कंप्लीटनेस है, उसकी जो संपूर्णता है, उसको हम नहीं पकड़ पाएंगे। हो सकता है क्योंकि शब्द बिल्कुल एकदम नए तो नहीं होते हैं, कुछ न कुछ उसके आसपास के अर्थ में आप हम सभी पहुंच जाते हैं। लगता है कि भले ही ये शब्द हमने डिक्शनरी में नहीं देखा है, कभी इसके अर्थ नहीं जाने हैं, लेकिन इसका मतलब ये होगा। अभी जब हम शब्दों पर आएंगे तो आप देखेंगे कि जैसे ही आप सुनेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि हाँ, इसका अर्थ ये होगा। और देखिए, आप सही भी होंगे, तो इसमें दो राय नहीं कि आप बिल्कुल दिन को रात और रात को दिन समझ रहे हैं, ऐसा नहीं होगा, आप आसपास समझ रहे हैं। लेकिन मित्रों, जो एग्जैक्ट होता है, जैसे रजनी, रजनी का मतलब होता है रात, राइट? निशा, निशा का मतलब भी होता है रात। आप अगर डिक्शनरी उठा करके देखेंगे तो दोनों के अर्थ हैं रात। और आपसे अगर कोई पूछेगा कि निशा का क्या मतलब होता है तो आप कहेंगे रात, तो बिल्कुल सही है। रजनी का क्या मतलब होता है? रात। आप बिल्कुल सही है। लेकिन वास्तव में एक बहुत पढ़े लिखे व्यक्ति के रूप में, एक भाषा का ज्ञान रखने वाले व्यक्ति के रूप में, और यहां मैं यदि कहना चाहूं तो सिविल सर्विस की तैयारी करने वाले एक स्टूडेंट के रूप में, आपसे थोड़ी सी चूक हो रही है। और वो चूक ये हो रही है दोस्तों कि आप उसके परिवेश को नहीं जान रहे हैं, है ना। मैं ये उदाहरण इसलिए दे रहा हूं ताकि आप समझ सकें कि मैं कहना क्या चाह रहा हूं। जो रजनी होती है वो रात तो होती है, लेकिन कौन सी रात होती है? वो चांदनी रात होती है, जब चंद्रमा निकला हुआ हो, उस रात को हम कहते हैं रजनी। और जो निशा होती है वो अमावस्या की रात होती है, जब चांद है ही नहीं और बहुत घना अंधकार हो, बिल्कुल काला, पूरा का पूरी जो रात है वो काली रात है, अंधेरी रात है, कुछ हाथ को हाथ नहीं सूझ रहा है, उसको हम कहते हैं निशा। अब आप देखेंगे, रात होने के बावजूद इन दोनों शब्दों के अर्थों में परिवर्तन आ गया। और ये जो परिवर्तन है, ये उसके परिवेश का परिवर्तन है। एक में चांद निकला हुआ है और दूसरे में चांद गायब है। तो मित्रों, ऐसे बहुत से शब्द होते हैं जो इस तरह का रिफ्लेक्शन करते हैं, इस तरह का एक्सप्रेशन देते हैं। और शब्द तो एक होता है, लेकिन वो ढेर सारे वातावरण को रिप्रेजेंट करते हैं। और ऐसे ही शब्दों को हम एक पारिभाषिक शब्दों के अंतर्गत लेंगे, जिनका बहुत ज्यादा उपयोग आपको अखबारों में मिलता है, थोड़े कुछ विषयों में भी मिलता है और बातचीत में भी मिलता है। मित्रों, होता क्या है, अब इसकी जरूरत क्यों है, मैं थोड़ा सा इस बात पर आऊं, क्योंकि जब आप इन चीजों को समझ लेंगे ना, तब आप सही मायने में जिन शब्दों के मैं अर्थ बताऊंगा उनके साथ आप न्याय कर सकेंगे। न्याय इस मामले में कि आपको लगेगा कि नहीं नहीं, ये तो सिक्के की तरह है, ये बड़े अच्छे सिक्कों की तरह है, ये चांदी के सिक्के की तरह है, ये चवन्नी और अठन्नी नहीं है, तो इन्हें संभाल कर रखना चाहिए। इसलिए मैं शुरू थोड़ा सा आपको इस बात से कर रहा हूं। मित्रों, एक पढ़े लिखे व्यक्ति और एक अनपढ़ व्यक्ति में क्या फर्क है? दोनों बातचीत करते हैं, और एक टॉपिक ले लीजिए, उस टॉपिक पर दोनों ही बातचीत कर सकते हैं। लेकिन जो एक अनपढ़ व्यक्ति है या कम पढ़ा लिखा है कह लीजिए, वो जो बातचीत करेगा उसके शब्दों को सुनिए। और एक जो पढ़ा लिखा व्यक्ति है या उस शब्द का प्रोफेसर है या अच्छा स्टूडेंट है, रिसर्च स्कॉलर है, उनकी बातचीत सुनिए आप। मैं कंटेंट पर नहीं जा रहा हूं, कंटेंट तो छोड़ दीजिए, कंटेंट तो बटने चलेगी, जो पढ़ा लिखा व्यक्ति है उसके पास बेहतर ही होगा। मैं शब्दों पर जा रहा हूं, तो आप देखेंगे कि जो पढ़ा लिखा व्यक्ति है, जो सब्जेक्ट का स्पेशलिस्ट है या रिसर्च स्कॉलर है, या स्पेशलिस्ट नहीं भी है तो अपेक्षाकृत ज्यादा पढ़ा लिखा है, वो कुछ ऐसे शब्दों का प्रयोग करेगा जो सुनने वाले को प्रभावित करता है, और जो एक अनपढ़ व्यक्ति है थॉट्स वो भी अपने एक्सप्रेस कर रहा है, ऐसा नहीं कि थॉट्स नहीं कर रहा है, थॉट्स को वो कर रहा है, लेकिन वो एक अनगढ़ किस्म की बात कर रहा है और शायद उसकी बातों का उतना ज्यादा एकेडमिक प्रभाव न पड़े। मैं प्रभाव की बात नहीं कर रहा हूं, मैं एकेडमिक प्रभाव की बात कर रहा हूं। हो सकता है कि वो व्यक्ति अपनी बात को उदाहरणों के द्वारा एक पढ़े लिखे व्यक्ति की तुलना में ज्यादा अच्छे से समझा सके, डेफिनेटली तो वो प्रभाव तो एक अलग प्रभाव होगा, विरल प्रभाव होगा, लेकिन जो एक एकेडमिक इम्पैक्ट होता है वो नहीं पढ़ पाएगा। तो मित्रों, जो इन शब्दों का जो प्रयोग होता है, पहला पॉइंट इस आधार पर मैं कहना चाहूंगा कि वो व्यक्ति की बौद्धिकता का परिचायक होता है, उसकी इंटेलेक्चुअलिटी का कहीं न कहीं परिचायक होता है कि नहीं, ये जो व्यक्ति है ये पढ़ा लिखा व्यक्ति है, अपने विषय को जानता है, और केवल जानता ही नहीं है बल्कि उन्हें उस विषय को किन शब्दों में किस भाषा में एक्सप्रेस करना चाहिए ये उससे भी परिचित है। राइट, फर्स्ट पॉइंट। दूसरा जो होता है फ्रेंड्स, होता क्या है कि शब्द या भाषा जो भी आप कहें एक कंटिन्यूअस फ्लोइंग रिवर की तरह है, ये एक तालाब की तरह नहीं है, झील की तरह नहीं है कि जिसमें एक बार पानी आ गया तो आ गया और फिर वो वहां है, ये एक फ्लोइंग रिवर की तरह, एक बहती हुई नदी की तरह है जो लगातार बह रही है, लगातार डेवलप हो रही है, नए नए शब्द आ रहे हैं, पुराने शब्द यूज से बाहर हो रहे हैं। मैं ये तो नहीं कह रहा हूं कि पुराने शब्द मर रहे हैं, यूज से बाहर हो रहे हैं और एक समय के बाद बिल्कुल खारिज हो जाते हैं, वो फिर एक लिखित साहित्य भर में जीवित रह जाते हैं। और लगातार डेवलप कोई भी भाषा होती है, कोई भी विषय होता है, हर विषय विकसित होता है, और जब वो विषय विकसित होता है तो अपने समय में अपने को एक्सप्रेस करने के लिए वो नए नए शब्दों की तलाश करता है। और ये जो शब्द हैं, ये जो नए शब्द जो आते हैं, ये डेफिनेटली बहुत से शब्द एक पारिभाषिक रूप में होते हैं, एक डिफाइंड फॉर्म में होते हैं। अब जब आप इन शब्दों को पकड़ लेते हैं और यूज करने लगते हैं, तो दूसरा जो प्रमाण मिलता है एग्जामिनर को या सुनने वाले को या पढ़ने वाले को, वो ये है कि नहीं, आपको अपने वर्तमान भाषा का भी बहुत अच्छा ज्ञान है। मतलब जो कंटेम्परेरी लैंग्वेज है, जो अभी भाषा चल रही है, जो बोली जा रही है, जो लिखी जा रही है, उसे भी आप बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं। और डेफिनेटली मित्रों, जब आप अपनी अच्छे वर्तमान की भाषा में अपनी बातों को रख पाते हैं, तो जो बात मैं पहले कह चुका हूं, जो तीसरी बात होती है वो ये है कि ये ज्यादा अधिक लोगों को प्रभावित करता है, और कम से कम एकेडमिशियन को तो प्रभावित करता ही है। मित्रों, आप बिल्कुल इस बात की अनदेखी न करें कि जो आपकी कॉपी जांचने वाला है, मैं एक सिविल सर्विस के लिहाज से बात कर रहा हूं, जो आपकी जो कॉपी जांच रहा है वो एक एकेडमिक पर्सन है ना, वो पॉलिटिशियन नहीं है जो हर विषय पर भाषण दे सकता है और हर विषय की जानकारी भी रखता है, और वो आपकी कॉपी जांच भी सकता है, लेकिन भाषा से शायद वो प्रभावित न हो क्योंकि उसके पास वो शब्दावली नहीं है और उस शब्दावली की उसको जरूरत नहीं है। लेकिन आपकी यहां जो कॉपी जांच रहा है वो एक एकेडमिक पर्सन है और अपने सब्जेक्ट का स्पेशलिस्ट है, तो वो डेफिनेटली जब आपके ऐसे शब्दों को देखेगा कि आपने प्रयोग की है तो प्रभावित होगा। प्रभावित क्या होगा, वो खुश हो जाएगा, उसका मन खिल उठेगा, तो इससे एक तरह से प्रभाव भी अच्छा पड़ता है। और मित्रों, आपको अगर अच्छे नंबर लाने हैं तो आपको अपने एग्जामिनर को कहीं न कहीं अतिरिक्त रूप से तो प्रभावित करना ही पड़ेगा, उसके बिना बात बनेगी नहीं। राइट, अब चौथा और बिल्कुल अंतिम पॉइंट है दोस्तों, मैं ज्यादा पॉइंट्स पे नहीं जाना चाहूंगा, आधा समय तो हमारा इसी में लग रहा है, लेकिन इंपॉर्टेंट है इस पर बात करना। वो ये कि आपने देखा है कि सिविल सर्विस में जो पेपर होते हैं, कितने शब्दों में आपसे एक उत्तर लिखने के लिए कहा जाता है। जनरल स्टडीज में 200 शब्द, निबंध में 1200 शब्द, और अगर आप अपने ऑप्शनल पेपर्स को ले लें तो 5 क्वेश्चन बनाने होते हैं, तो एक क्वेश्चन को आप कितने शब्दों में बना सकते हैं, आप 3 घंटे के अंदर आप बताइए कि आप कितने शब्द लिख सकते हैं। अगर हम 20 क्वेश्चन माने, जनरल स्टडीज को लेकर के चलें कि 20 क्वेश्चन पूछे जाते हैं और एक क्वेश्चन 200 शब्दों में लिखना होता है, तो मतलब टोटल जो पेपर हुआ 20 क्वेश्चन का 4000 शब्दों का हुआ, 3 घंटे का समय इसके लिए भी है। तो आप ऑप्शनल पेपर के लिए भी 3 घंटे का समय है, पांच क्वेश्चन आपको बनाने हैं, 4000 शब्द अगर इसी को वहां अप्लाई कर दें कि 4000 शब्दों में वहां भी लिखना है, तो 4000 को फिर शब्दों को फिर पांच जो क्वेश्चन लिखने हैं उनकी संख्या में भाग दे दे, तो एक क्वेश्चन के लिए बचते हैं 800 शब्द। और उतने बड़े प्रश्न को 800 शब्दों में लिखना फिर से एक कला की मांग करता है। तो मित्रों, ये जो पारिभाषिक शब्दावली है इनकी सबसे बड़ी एक और खासियत होती है, वो ये है कि आप कम से कम शब्दों में अपनी अधिक से अधिक अभिव्यक्ति कर सकते हैं। और ये फिर से आपको एक ताकत देता है, क्योंकि वहां आपके पास शब्द बहुत कम है, वहां तो आपको शब्दों का जो इस्तेमाल करना है वो 20-20 क्रिकेट मैच की तरह करना है कि हर बॉल वहां इंपॉर्टेंट है, आपके हर शब्द इंपॉर्टेंट है। तो ऐसी स्थिति में निश्चित रूप से ये जो पारिभाषिक शब्द हैं ये आपकी बहुत अधिक मदद करते हैं। तो मित्रों, ये चार पॉइंट्स हैं, मुझे लगता है कि जिसकी वजह से आपको इनके इस्तेमाल की ज्यादा से ज्यादा कोशिश करनी चाहिए, इनका ज्ञान भी होना चाहिए और ज्ञान पूरे परिवेश के साथ होना चाहिए। और ये जो मैंने चार आपको पॉइंट्स बताए हैं, वो पहला तो ये है कि ये आपकी बौद्धिकता का परिचायक है कि हाँ आप एक पढ़े लिखे समझदार व्यक्ति हैं। दूसरा, ये इस बात का भी परिचायक है कि आपको जो मॉडर्न लैंग्वेज है उसकी, कंटेम्प्रेरी लैंग्वेज है उसकी जानकारी है। और डेफिनेटली ये दोनों बातें आपके एक्सप्रेशन को बहुत ही इफेक्टफुल बना देती है, बहुत ही इम्प्रेसिव बना देती हैं। और नो डाउट कि कम से कम शब्दों में अधिक से अधिक बात कह देने में भी ये जो पारिभाषिक शब्द हैं आपकी बहुत अधिक मदद करते हैं। मित्रों, ये चार मुख्य कारण हैं जिसकी वजह से आपको इसके बारे में जानना चाहिए। और जानने के लिए बहुत जरूरी है मित्रों कि आपको इसे लगातार फिर अपने इस्तेमाल में लाना भी चाहिए। अगर आप मेरी इस ऑडियो को सुन करके और इसे भूल जाएंगे कि ठीक है अब हम समझ गए हैं, तो बात बनेगी नहीं। हाँ, ऑडियो को सुनने के बाद जब आप उन शब्दों के अर्थ समझ लेंगे, तो डेफिनेटली फिर जब आप इन्हीं शब्दों का इस्तेमाल जब आप अखबार में पढ़ेंगे, जब आप टीवी पर, रेडियो पर या और किसी भी माध्यम में जब आप सुनेंगे, तो आप देखेंगे कि आपको अब उसी को समझने की आपकी कैपेसिटी कितनी बढ़ गई है। आपको ध्यान होगा कि क्लास में मैंने एक आपको पढ़ने के तरीके के अंतर्गत, साइंस ऑफ स्टडी के अंतर्गत मैंने आपको बिंब इमेज फॉर्मेट करने की एक टेक्निक बताई थी कि किस तरह से आपको पढ़ते समय आपको अपने दिमाग में इमेजेस क्रिएट करने चाहिए। और वो ऑटोमेटिक होते भी जाते हैं, लेकिन आप थोड़े सतर्क हो जाएंगे तो वो ज्यादा गहरे इमेज बनेंगे। और देखेंगे कि जब आप इन पारिभाषिक शब्दावली के परिवेश को समझ लेंगे तो फिर वो इमेज ज्यादा परफेक्ट बनने लगेंगे। मित्रों, उदाहरण के रूप में आप अभी टेस्ट कर सकते हैं। अब मैं बोलता हूं रजनी, अब आप बताइए कि आपके दिमाग में किस तरह के रात की इमेज आई। मैं कह रहा हूं निशा, अब आप देखिए कि आपके दिमाग में जो अब इमेज आ रही है वो बिल्कुल काली अंधेरी रात की आ रही है। पहले ऐसा कुछ नहीं होता, तो पहले रात की केवल इमेज आती थी। तो ये होता है कि जैसे ही आप पारिभाषिक शब्दावली को समझ लेते हैं और परफेक्ट तरीके से समझ लेते हैं, तो आपके दिमाग में इमेज भी फिर बिल्कुल परफेक्ट तरीके से आती है। और वो इमेज जो होती है वो ज्यादा ब्रॉड होती है, ज्यादा परफेक्ट होती है और ज्यादा डीप भी होती है। तो दोस्तों, अब मैं आता हूं शब्दों पर। कुछ शब्द मैं लूंगा और डेफिनेटली जिस तरीके से वक्त बीत चुका है उसको देखते हुए डेफिनेटली अब आप कह सकते हैं कि ये जो स्पेशल ऑडियो गाइडेंस है ये पारिभाषिक शब्दों के अर्थ का पार्ट वन है, और इसका पार्ट टू फिर नेक्स्ट वीक में आपको प्रोवाइड किया जाएगा, क्योंकि शब्दों के जो डिटेल्स होंगी मैं चाहूंगा कि हम विस्तार के साथ उन पर बात करें। इसीलिए मैं फिर से याद दिलाना चाहूंगा कि इस ऑडियो को सुनने के बाद भी अगर आपको कुछ शब्द रह जाते हैं, हो सकता है कि वो मेरी ऑलरेडी लिस्ट में हो, लेकिन आप अगर अपनी तरफ से भेज देंगे तो हो सकता है कि वो शब्द मेरी लिस्ट में न हो, तो वो सेकेंड पार्ट में वो इंक्लूड हो जाएंगे। मित्रों, अब मैं आता हूं कुछ शब्दों पर। तो हम शुरुआत करते हैं जो बहुत ज्यादा उपयोग में लाए जाने वाले शब्द हैं। जैसे दोस्तों, हम राष्ट्र वाले हिस्से को लेकर के चलते हैं। मैं एक समूह को चुनूंगा। एक शब्द है राष्ट्रवादी, है ना, आप इस तरह के शब्द बहुत सुनते होंगे कि वो बहुत ही नेशनलिस्ट है, नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी है, वो बड़ा राष्ट्रवादी है, फलाना है, और इस तरह से सुनते हैं। बेसिकली जब हम राष्ट्रवादी कहते हैं तो उसका क्या मतलब है? हालांकि आप इसके अर्थ को जानते होंगे, लेकिन चूंकि दूसरे शब्द भी उसी से रिलेटेड हैं, तो उनको स्पष्ट करने के लिए जरूरी है कि मैं इस शब्द को भी स्पष्ट करूं। जो राष्ट्रवादी है, जो वो है अपने राष्ट्र के प्रति जो बहुत प्रेम करने वाला हो, राइट। लेकिन ये केवल सामान्य रूप से प्रेम करने वाला राष्ट्रवादी नहीं है कि जो अपने देश की सीमाओं से ही प्यार कर रहा हो, है ना, अपने देश की स्वतंत्रता से ही प्यार कर रहा हो, या जो केवल मान लीजिए कि कोई एक गुलाम देश है, है ना, या कह लीजिए कि आजादी से पहले हम एक गुलाम देश थे, तो जब हम गुलाम देश थे और उस गुलाम देश में अगर हम कह रहे हैं कि हम राष्ट्रवादी हैं, तो इसका मतलब ये तो हो ही गया कि हम अपने राष्ट्र को आजाद देखना चाहते हैं, हम राष्ट्रवादी हैं, राष्ट्रवादी भावना से प्रेरित हैं, हम चाहते हैं कि हमारा देश ब्रिटेन की गुलामी से आजाद हो। लेकिन राष्ट्रवादी इतना छोटा शब्द नहीं है, राष्ट्र के अंतर्गत और जो दूसरी चीजें आती हैं वो सब भी उसमें शामिल होती हैं। आपको केवल अपने राष्ट्र की राजनीतिक स्वतंत्रता से ही प्रेम नहीं है, बल्कि अपने देश की भाषा से प्रेम है, अपने देश की संस्कृति से प्रेम है, अपने देश के पर्यावरण से प्रेम है, रीति रिवाज से प्रेम है, मतलब आप अपने देश को एक पूरी संपूर्णता के साथ प्यार करते हैं, वो हो जाता है फिर राष्ट्रवादी। राइट दोस्तों, तो इसको कहते हैं हम एक राष्ट्रवादी। राइट, क्लियर हो गया, थोड़ा सा देखिए व्यापक हो गया। अब आप देखिए कि इसी में एक जो दूसरा शब्द आता है वो हो जाता है उग्र राष्ट्रवादी, उग्र राष्ट्रवादी। तो अब ये जो उग्र शब्द जो एक प्रीफिक्स के रूप में एक अलग से आ गया कि ये उग्र क्या हुआ, उग्र का मतलब ये नहीं हुआ कि अपने देश से वो बहुत ज्यादा प्यार करता है, ऐसा नहीं है। उग्र का मतलब यहां बहुत अधिक प्यार करता है वो नहीं, उग्रवाद जो केवल जो राष्ट्रवादी है वो भी बहुत ज्यादा प्यार करता है। जो उग्र राष्ट्रवादी है वो उनको कहा जाता है जो अपने राष्ट्र से तो करते हैं लेकिन दूसरों से नहीं करते, दूसरे के राष्ट्र से नहीं करते, या कह लीजिए कि दूसरे को कहीं ना कहीं अपना वो प्रतिद्वंदी ही मानने लगते हैं। शायद इस उदाहरण से ये ज्यादा क्लियर हो जाए, जैसे आप हिटलर को लीजिए, नो डाउट इसमें कोई दो राय नहीं कि हिटलर जर्मनी को बेहद प्यार करता था, नो डाउट वो जर्मनी को एक तरह से विश्व का एक शक्तिशाली राष्ट्र खड़ा करना चाहता था, बनाना चाहता था, और वो एक तरह से जर्मनी के खोए हुए जो स्वाभिमान था उसको, जो सेकेंड वर्ल्ड वार के बाद, जो फर्स्ट वर्ल्ड वार के बाद जो उसने खो दिया था उसको रीस्टैब्लिश करना चाहता था, तो उस हिसाब से वो राष्ट्रवादी था। लेकिन हुआ यह कि वो अपने राष्ट्र से इतना ज्यादा प्यार करने लगा, इतना ज्यादा प्यार करने लगा कि दूसरों से घृणा करने लगा, जाति के आधार पर प्यार करने लगा और दूसरी जातियों से घृणा करने लगा। यहूदियों को पकड़ पकड़ करके उसने मारा है, लाखों करोड़ों यहूदी मार डाले गए, दूसरे राष्ट्रों पर अटैक करने लगा। तो मेरा अपने देश के प्रति प्रेम इतना ज्यादा बढ़ जाए कि वो दूसरे देशों के प्रेम की घृणा प्रतिस्पर्धा हिंसा में तब्दील हो जाए, उसे फिर हम कहते हैं उग्र राष्ट्रवादी। राइट, तो उग्र राष्ट्रवादी का अर्थ अपने देश से बहुत ज्यादा प्यार करना नहीं है बल्कि बड़े अव्यवहारिक स्तर तक चले जाना है। अब मित्रों इसी में फिर एक और शब्द अभी कुछ समय से अखबारों में काफी आने लगा, पहले भी आता था ऐसा नहीं है, वो है हिंदू राष्ट्रवादी। कुछ लोगों को कहा जाता कि ये हिंदू राष्ट्रवादी है। राइट, अब जैसे इसको अगर हम पॉलिटिकल पार्टी के हिसाब से लेकर के चले तो जितने भी भारत के राजनीतिक दल हैं वो सब राष्ट्रवादी हैं, अगर उस तरीके से मान के चले तो सब अपने राष्ट्र से प्यार करते हैं, अपने राष्ट्र का विकास करना चाहते हैं। तो जो हिंदू राष्ट्रवादी है तो उसमें हिंदू शब्द जो जुड़ा है, मेरी समझ से समझना आपके लिए आसान होगा, उसका मतलब ये हुआ कि वो अपने राष्ट्र को एक तरीके से हिंदुओं के राष्ट्र के रूप में देखते हैं कि ये जो राष्ट्र है वो हिंदुओं के लिए राष्ट्र है, या हिंदुओं की संस्कृति ही इस राष्ट्र की संस्कृति है, मतलब वो फिर उसको एक सीमित बना देते हैं। राइट, अब भारत जैसे देश की जो शुरू से लेकर के अभी तक जो परंपरा रही है, देखिए अगर हिंदू को अब हम इस तरीके से एक जाति विशेष में देखने लगे, अदरवाइज तो ये स्थानवाचक था। अगर आप इतिहास में जाकर के देखें, सिंध प्रदेश के रहने वाले देश के लोगों को सिंध को उन्होंने हिंदू कहा और हिंदू कहा, और उसके आसपास के रहने वाले लोगों को हिंदू कहा, और हिंदू को सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा है कि ये एक जीवन पद्धति है, कोई धर्म नहीं है, ये कोई जाति नहीं है, कोई समुदाय नहीं है, वो एक अलग बात है। तो जो हिंदू राष्ट्रवादी है, ये जो शब्द आया है, जो प्रचलित हो गया है अब आपके अखबारों में या प्रेस में, तो अब इन अर्थों में हो गया जो मैंने पहले आपसे राजनीतिक पार्टियों की बात कही कि सारी पार्टियां राष्ट्रवादी हैं। राइट, अब इसमें हिंदू राष्ट्रवादी पार्टी वो है जो बेसिकली इस राष्ट्र को हिंदुओं का राष्ट्र मानती है और बाकी अपने को राष्ट्रवादी कहते हैं, और जो केवल हिंदुओं का मानती है उसको फिर आप उग्र हिंदू राष्ट्रवादी या उग्र राष्ट्रवादी कह लीजिए। लेकिन जो हिंदू राष्ट्रवादी है, जब हम हिंदू राष्ट्रवादी कहते हैं तो उनको आप उग्र राष्ट्रवादी नहीं कह सकते, वो थोड़े से मॉडरेट भी है। अगर हम हिंदू राष्ट्रवादी कहते हैं तो दोनों को आप हिंदू राष्ट्रवादी और उग्र राष्ट्रवादी दोनों को एक समझने की गलती मत कीजिएगा, है ना। हिंदू राष्ट्रवादी में मतलब मूलतः चूंकि यहां की आबादी वो है, यहां की संस्कृति इसी से रिलेटेड रही है तो वो प्रिवेल करनी चाहिए और बाकी सभी धर्म दूसरी जाति समुदाय के लोगों को भी यहां रहने का उतना ही अधिकार है जितना कि हिंदुओं का है, जैसा कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में। तो हिंदू राष्ट्रवादी इस चीज को लेकर के चलते हैं लेकिन वो तुष्टिकरण की नीति का विरोध करते हैं, और चूंकि ये हमारी संस्कृति रही है और लंबे समय तक चलती रही है तो इसको प्रोमिनेंसी मिलनी चाहिए, इसकी कीमत पर दूसरों को उभार नहीं मिलना चाहिए, ये इनका अपना कहना है। तो ऐसे लोगों को कह दिया जाता है हिंदू राष्ट्रवादी, राइट। अब इसी से रिलेटेड अगला शब्द है उदारवादी, है ना, लिबरल पार्टीज कहते हैं। इसमें भी आपको पॉलिटिकल पार्टीज मिलेंगी उदारवादी। देखिए उदारवादी वो है कि जो खासकर राष्ट्रवाद को तो मानते हैं, अपने देश को मानते हैं, अपने भाषा संस्कृति लोग सबसे प्यार करते हैं, जो जाति रहती है उन सबसे प्यार करते हैं, लेकिन इससे भी उठ करके थोड़े से लिबरल हो जाते हैं, है ना, मतलब उदार भाव रखते हैं दूसरी जातियों के प्रति, धर्म के प्रति, संस्कृति के प्रति, वो थोड़ा सा एक तरह से नर्मवादी होते हैं। राष्ट्रवादी और उदारवादी में अगर हम तुलना करेंगे तो आप ये कह लीजिए कि जो राष्ट्रवादी हैं वो थोड़े से हार्ड हैं अपने देश के लिए, और जो उदारवादी हैं वो थोड़े से लिबरल हैं अपने देश के लिए। आप ये रूप ले सकते हैं। जैसे एक उदाहरण के लिए चलिए मैं अभी समझाता हूं, एग्जैक्ट मत लेकर के चलिएगा, आप उदाहरण के रूप में आपको बताता हूं। जैसे भारत और पाकिस्तान के रिश्ते को ले लीजिए, अब हम सरकार को लेकर के चलते हैं। आप देखिए कि भारत लगातार पाकिस्तान से जो कश्मीर की समस्या है या जो आतंकवाद की समस्या है जो सीमा प्रदेशों पर, उसके लिए लगातार बातचीत करने की बात कह रही है ना, तो वो एक उदारवादी रुख लेकर के चल रही है कि भाई बातचीत से समस्या को सुलझाएंगे, आइए बैठिए, डेट फिक्स हो रहे हैं फिर कैंसिल हो रही है, ये एक उदारवादी रुख हो जाता है। लेकिन दूसरी ओर से आप देख रहे हैं कि जब भी ऐसी बात होती है तो फिर कहीं क्या कहते हैं गोलीबारी चल जाएगी, कहीं वो हो जाएगा, ताकि ये ना होने पाए। तो एक जो सामने वाला जो देश है वो उदारवादी नहीं है। अब वहां के लोग उस पार्टी को, उस सरकार को राष्ट्रवादी कह सकते हैं कि भाई अपने देश से प्रेम, हम कश्मीर नहीं छोड़ेंगे, हम ये नहीं करेंगे, हम अपने देश के लिए मर जाएंगे, मिट जाएंगे, ये तो आप कह सकते हैं, वो वहां के लोग कह सकते हैं कि भाई ये राष्ट्रवादी भावना है, कुछ सीमा तक जब बहुत ज्यादा राष्ट्रवादी भावना है, लेकिन फिर आप उदारवादी नहीं कहेंगे। उदार ये है कि नहीं, हम आपको भी एकोमोडेट करना चाह रहे हैं, हम एक लिबरल व्यू लेकर के चलते हैं जहां हम चीजों को बातचीत से हम सुलझाना चाहते हैं, और आइए टेबल पर बैठते हैं और कुछ करने की कोशिश करते हैं, थोड़ा सा आप हमारी सुन लीजिए, हमारी मान लीजिए, और थोड़ी सी हम आपकी मान लेते हैं, और इस तरह से रास्ता निकल जाएगा। तो जो इस व्यू को लेकर के चलते हैं उनको हम कहते हैं उदारवादी, राइट फ्रेंड्स। एक शब्द जो मुझे अखबारों में कुछ समय से पढ़ने को मिला, बहुत ज्यादा नहीं मिला, भी ये इतना प्रचलित नहीं हुआ है, वो है नव उदारवादी। दोस्तों ये नव शब्द खूब चला है, नव का मतलब नाइन से नहीं है, नव का मतलब है न्यू लिबरलिस्ट, न्यू लिबरलिज्म। नव आप देखेंगे कि बहुत से शब्दों के आगे ये नव शब्द लगा है, जैसे आपको मिल जाएगा आधुनिकतावाद, लिटरेचर के स्टूडेंट जाते हैं नव आधुनिकतावाद, उत्तर आधुनिकतावाद, उत्तर आधुनिकतावाद, पोस्ट मॉडर्निज्म जिसको हम कहते हैं, ठीक इसी तरह से मैनेजमेंट के स्टूडेंट जानते हैं और खासकर जो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के हैं वो भी स्टूडेंट जानते हैं मैनेजमेंट, फिर न्यू मैनेजमेंट एडमिनिस्ट्रेशन, फिर न्यू एडमिनिस्ट्रेशन। तो ये न्यू शब्द चला है, ये न्यू शब्द का मतलब है कि आज के समय में अब क्या जरूरत है। मित्रों खासकर 1980 के बाद, ये नौ शब्द के पीछे की कहानी मैं आपको बता रहा हूं कि 1980 के बाद दुनिया में बहुत तेजी से परिवर्तन हुआ है, और मैंने आपको से बहुत पहले भी एक बार चर्चा की थी कि जो मार्गरेट थैचर और जो रीगन, अमेरिका में रीगन और ब्रिटेन में जो मार्गरेट थैचर आई, उन्होंने जो फिर अपनी पॉलिटिकल थ्योरी दी उसका बहुत जबरदस्त इम्पैक्ट दुनिया पर पड़ा, और 1980 के बाद चीजों में धीरे धीरे बदलाव आना शुरू हुआ और सन 2000 के आसपास से बड़ी स्पष्ट रूप से वो चीज दिखाई देने लगी, राइट। अब हो क्या रहा है कि अब मैनेजमेंट की जगह आप नया शब्द नहीं ला सकते, प्रबंधन है। लेकिन नई बदलती हुई परिस्थितियों में जो मैंने आपसे कहा कि 1980 के बाद जो प्रभाव पड़ा और सन 2000 के बाद जो स्थितियां बनी, तो उन बनी हुई नई स्थितियों को हैंडल करने के लिए, उनको व्यवस्था देने के लिए, आप जो ऑलरेडी सिस्टम चल रहे थे उस सिस्टम को आपने अडॉप्ट किया, क्योंकि आप उसी सिस्टम के तहत उसको व्यवस्था दे सकते थे, लेकिन उसी सिस्टम के अनुसार व्यवस्था नहीं दे सकते थे। जैसे डेमोक्रेसी, अब ठीक है डेमोक्रेसी अपने ढंग से काम कर रही है, अब डेमोक्रेसी से बेटर पॉलिटिकल सिस्टम अभी आपके पास कुछ नहीं है, तो सन 2000 की का भी जो पॉलिटिकल सिस्टम होगा वो डेमोक्रेटिक ही होगा, लेकिन उसी फॉर्म में वो डेमोक्रेसी नहीं होगा जिस फॉर्म में वो 1960 में था। अब आप देख रहे हैं कि भारत में देख लीजिए, सन 2000 के बाद राइट टू इन्फॉर्मेशन कब आया, 2000 के बाद आया। आप ह्यूमन राइट्स कमीशन देखिए, 2000 के बाद से इतने तेज हुए। महिला आयोग इस तरह के देखिए, जो आदमी जो ह्यूमन बीइंग के डिग्निटी को, उनके राइट्स को जो प्रोटेक्ट करने वाले हैं, वो कब आए, 2000 के बाद ज्यादा शक्तिशाली हुए। एनजीओ कब शक्तिशाली हुए, 2000 के बाद शक्तिशाली हुए। सिविल सोसाइटीज कम प्रोमिनेंट हुई, 2000 के बाद हुई। 80 के बाद ही आप देखिए कि पब्लिक लिटिगेशन कब से शुरू हुआ, वो 1990 के बाद से शुरू हुआ, इसके बाद इसकी बहुत ज्यादा चर्चा होने लगी। तो सिस्टम तो डेमोक्रेसी है, तो आप इसको नव लोकतंत्र भी कह सकते हैं कि ये लोकतंत्र का नया पैटर्न है। एडमिनिस्ट्रेशन में भी यही हुआ कि जो एडमिनिस्ट्रेटर है हमारे पहले जैसे ही है, जो वही लोग एडमिनिस्ट्रेशन कर रहे हैं। रूल्स रेगुलेशन में भी बहुत बदलाव नहीं हुआ, लेकिन अब वो उस तरीके से एडमिनिस्ट्रेशन नहीं कर सकते जिस तरीके से वो इससे पहले कर रहे थे। तो एडमिनिस्ट्रेशन में मैनेजमेंट आने लगा, मतलब अब अधिकारों पर आधारित मैनेजमेंट एडमिनिस्ट्रेशन नहीं होगा, अब लक्ष्यों पर आधारित मैनेजमेंट होगा, वेलफेयर ओरिएंटेड एडमिनिस्ट्रेशन होगा। अब आप आदेश दे देकर के बात नहीं कर सकते। तो इस तरीके से सारी चीजों में परिवर्तन आया, और ये जो परिवर्तन था ये ह्यूमन मनुष्य की गरिमा अधिकारों के पक्ष में किया गया परिवर्तन था, कि वो मनुष्य की बात करे, मनुष्य के कल्याण की बात करे, मनुष्य के अधिकार की बात करे, मनुष्य की समानता की बात करे। तो एक जो फ्यूडल सिस्टम था, जो डिक्टेटरशिप का जो सिस्टम था, उसको ब्रेक किया गया। तो वो जो उसको जो उन्होंने बहुत ज्यादा स्वीकार किया वो नव उदारवादी कहलाने लगे, मतलब जिन्होंने लोकतंत्र को एक डेमोक्रेटिक सिस्टम से हटाकर एक तरह से लाइफ का सिस्टम बना दिया और हर चीज में वो सही मायने में डेमोक्रेट हो गए, तो वो उनको हम कहते हैं नव उदारवादी। तो ये जो नव शब्द है मित्रों, ये मैं खासकर इसको डिटेल में थोड़ा इसलिए मैंने बताया, इसकी कहानी इसलिए सुनाई कि ये जो नव शब्द है आपको प्रीफिक्स के रूप में बहुत जगह पढ़ने को मिलेगा। तो जहां भी ये शब्द लगा हुआ हो आप समझ लें कि वो एक मॉडर्न लिबरलाइजेशन को एक्सप्रेस करने वाला वर्ड है। तो दोस्तों आज जिन शब्दों की मैंने चर्चा की है वो है राष्ट्रवादी, उग्र राष्ट्रवादी, हिंदू राष्ट्रवादी, उदारवादी और नव उदारवादी। इन शब्दों की मैंने चर्चा की है। आज मैं केवल इतने ही शब्दों की चर्चा करना चाहूंगा, क्योंकि अगर मैं दूसरे शब्द लूंगा तो डेफिनेटली वो जो शब्द होंगे वो एक नए कैटेगरी के शब्द होंगे और उनकी चर्चा करने के लिए हम लोग के पास अब इतना वक्त नहीं है। तो डेफिनेटली उनकी दोस्तों इसे मैं अब यहीं समाप्त करना चाहूंगा। मुझे यकीन है कि जिन शब्दों की हम लोग चर्चा इसमें हम लोगों ने की है और आगे जिनकी चर्चा करेंगे उनको फिर धीरे धीरे आप अपने आंसर राइटिंग में, अपने ऐसे राइटिंग में लाना शुरू कर देंगे, और यहां तक कि जब आप किसी सब्जेक्ट पर डिस्कस करते हैं तब भी इन शब्दों का प्रयोग आप करेंगे, क्योंकि जब तक आप इन शब्दों का प्रयोग नहीं करेंगे तब तक वो फिर आपके आंसर राइटिंग में नेचुरल तरीके से उतरेंगे नहीं। सोच सोच करके लिखने से फिर वो चीजें आर्टिफिशियल हो जाती हैं, फिर शब्द जो है आपका एक शब्द उस पूरे के पूरे सेंटेंस में अच्छी तरह से बैठेगा नहीं। तो मित्रों इसी के साथ ही अब मैं इजाजत लेना चाहूंगा, फिर मुलाकात होगी। नमस्कार।